श्यामली बिना कुछ देखे बाथरूम में चली गई। दरवाज़ा अंदर से बंद करते ही उसके कंधे ढीले पड़ गए, जैसे भीतर की सारी ताकत वहीं छूट गई हो। उसने शावर ऑन किया, ठंडा पानी सिर से होकर पीठ पर गिरा, तेज बेरहम। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर। आवाज़ें बाहर दब गईं, लेकिन उसके भीतर शब्द गूंज रहे थे, हर एक नुकीला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पानी के साथ मिलकर चेहरे से फिसलते हुए। उसने हथेलियों से मुंह ढक लिया, पर सिसकी रोक न सकी। आपने मुझे ऐसा समझा, उसकी आवाज टूट गई। फिर उसने खुद को संभाला, जैसे किसी से नहीं, खुद से बात कर रही हो। आपने सोचा कि पैसों के लिए मैं किसी के साथ वो सब। वो हंसने की कोशिश करती है, पर हंसी नहीं निकलती, सिर्फ दर्द। हाँ, उसने धीमे से कहा, उस वक्त मैंने आपसे पैसों की खातिर शादी की थी, वो मेरी मजबूरी थी, घर के हालात ऐसे थे। शब्द कहते ही जैसे उसने अपने ही सीने में चाकू घुमा दिया हो। वो कुछ पल चुप रही, पानी लगातार गिरता रहा। फिर उसकी आवाज़ में एक ठहराव आया, कठोर, सच्चा। लेकिन मैंने खुद को नहीं बेचा था। उसने आंखें बंद कर लीं, माथा घुटनों से टिका लिया। मैं मजबूर थी, वो बोली, डरी हुई थी। दुनिया बहुत आसान नहीं होती विश्वनाथ जी, हर किसी के लिए नहीं। उसके सामने वही सवाल घूम रहा था, एक रात की दुल्हन। उसने सिर झटका, जैसे उस ख्याल को झटक कर गिरा देना चाहती हो। अगर पैसे ही सब कुछ होते, उसकी आवाज़ कांपी, तो मैं उस रात आपकी आंखों में नहीं देखती, आपकी खामोशी से नहीं डरती, मैं शर्म से नहीं सिमटती। वो रुक गए, सांसें भारी थीं। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मुझे लगा आप अच्छे हैं, उसने कहा। आप ऐसे नहीं हैं जो किसी औरत को सौदे की तरह देखें। शावर का पानी अब उसकी पीठ पर नहीं, सीधे सिर पर गिर रहा था। वो हिली नहीं। आज आपने जो कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट बन गई। वो नशे से ज़्यादा चुभा, उस रात से भी ज़्यादा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर नल थोड़ा धीमा किया। बाथरूम में अब सिर्फ पानी की मध्यम आवाज़ और उसकी सांसों की गिनती थी। मैं कमज़ोर थी, उसने माना, पर बेइज्जत नहीं। वो उठी नहीं, बस वहीं बैठी रही, जैसे उठने से डर रही हो कि कहीं खड़ी होते ही सब टूट न जाए। कुछ देर बाद उसने चेहरा उठाया, आईने की ओर देखा। पानी से धुंधला पड़ा आईना और उसमें एक लड़की, आंखों में लालिमा, होठों पर कसाव। मैंने गलतियां की हैं, उसने खुद से कहा, पर मैं गलत नहीं हूं। उसने शावर बंद किया। अचानक आई खामोशी चौंकाने वाली थी। बाहर कहीं दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, या शायद उसके दिल ने ही सुनी हो। श्यामली ने तौलिया उठाया, खुद को लपेटा और वहीं खड़ी रही, बाथरूम की ठंडी टाइल्स पर, एक सवाल के साथ, क्या सच बोलना काफ़ी होता है जब भरोसा चोट खा चुका हो। हवेली के बाहर निकलते ही विश्वनाथ ने कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आवाज़ गेट की दीवारों से टकरा कर लौट आई, जैसे उसकी झुंझलाहट का जवाब दे रही हो। उसने सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया। इस बार हाथ नहीं कांपे, पर पकड़ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त थी। कैसे, उसने दांत भींचते हुए कहा, कैसे वो ऐसा सोच सकती है। कार तेज़ी से आगे बढ़ी, गेट पीछे छूट गया। हवेली की ऊंची दीवारें आंखों से ओझल हो गईं, लेकिन उसके दिमाग से एक भी तस्वीर नहीं हटी। कल रात, शराब, नज़दीकियाँ, वो भरोसा जो उसे कभी गलती नहीं लगा था। वो मेरी पत्नी है, उसने खुद से कहा, आवाज़ में गुस्सा था। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई सौदा नहीं था। सड़क सुनसान थी, सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। पेड़ों के बीच से धूप छनछन कर आ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके भीतर बस एक ही बात घूम रही थी, श्यामली की आंखों में वो डर, वो झिझक। उसने स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाईं, वो बड़बड़ाया, मैंने उसे कभी छोटा नहीं समझा। फिर उसने खुद को इतना दोषी क्यों मान लिया। कल रात का एक एक पल उसके सामने उभर आया, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक करीब आना जो दोनों ने मिलकर चुना था, और अब उसे कमजोरी कहा जा रहा था। अगर वो उसे गलती मानती है, उसकी आवाज़ कड़वी हो गई, तो क्या मुझे भी वही मानना चाहिए। कार शहर की सीमा से बाहर निकल आई, ट्रैफिक कम था, हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, पर उसका सिर भारी था। उसने अचानक ब्रेक लगाया, गाड़ी किनारे रुक गई। कुछ पल वो यूं ही बैठा रहा, फिर गुस्से में हंस पड़ा, छोटी खोखली हंसी। मैं उससे नाराज़ हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन क्यों। सच ये था कि गुस्सा शामली पर नहीं था। गुस्सा इस बात पर था कि उसने खुद को इतना अकेला महसूस किया कि वो सोचने लगी शायद जो हुआ वो उसकी गलती थी। उसे मुझ पर भरोसा होना चाहिए था, उसने धीमे से कहा, जितना मुझे उस पर है। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर शामली का नाम नहीं था, फिर भी उंगली अपने आप वहीं रुक गई। उसने फोन वापस रख दिया। नहीं, उसने सिर झटकते हुए कहा, अभी नहीं, अभी मैं भी ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। कार फिर स्टार्ट हुई, इस बार रफ्तार धीमी थी। गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था और कहीं ना कहीं एक डर में। डर इस बात का कि कहीं उसने अपने गुस्से में वो शब्द ना कह दिए हों जो शामली के मन में पहले से चल रही शंका को और गहरा कर दें। मैं उसे समझाऊंगा, उसने मन ही मन कहा, लेकिन पहले मुझे खुद समझना होगा। सड़क आगे बढ़ती रही, कार चलती रही और विश्वनाथ गुस्से, सफाई और पछतावे के बीच फंसा हुआ बस आगे देखता रहा, बिना ये जाने कि अगली बातचीत किस मोड़ पर ले जाएगी। आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी, नीम के पेड़ के नीचे झूला धीरे धीरे हिल रहा था। रत्ना देवी उसी पर बैठी थी, हाथ झूले की रस्सी पर, आंखों में रात की बची हुई बेचैनी। पास ही कुर्सी पर शकुंतला बैठी थी आंचल ठीक करते हुए। चलो, रत्ना देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब दोनों घर लौट आए। पूरी रात दिल घबराता रहा, बारिश ऐसी थी कि मन में बस यही डर लगा रहा कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। शकुंतला ने सिर हिलाया, हाँ माँ, लेकिन आपने देखा, उसने आवाज धीमी कर ली, जब से वो लोग लौटे हैं दोनों के चेहरे ऐसे हैं जैसे कुछ भारी सा लादे हों, नजरें भी नहीं मिली एक दूसरे से। रत्ना देवी का झूला थम गया, उन्होंने शकुंतला की तरफ देखा। कुछ तो हुआ है, उन्होंने धीरे से कहा, रात का असर होता है बेटा, हर सुबह अपने साथ सवाल ले आती है। पता नहीं, शकुंतला ने चिंता से कहा, कल रात ऐसा क्या हो गया कि आज दोनों ऐसे टूटे से लग रहे हैं। आंगन के दूसरे सिरे पर आर्यन खड़ा था, वो बाहर निकलने ही वाला था पर ये बातें उसके कानों में पड़ गईं। वो वहीं ठिठक गया, चेहरा सख्त हो गया, आंखों में सवाल उतर आए। उसने एक बार हवेली की ओर देखा, ऊपर की खिड़कियों की तरफ, कुछ सही नहीं था और ये एहसास उसे भीतर तक बेचैन कर गया। वहीं आंगन में हवा के साथ झूला हल्का सा हिला और बात अधूरी रह गई।